ஓம் சாந்தி. हमारा अति प्रिय मीठे बाबा ने ज्ञान का सागर बनकर के हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान के खजाने भर रहे हैं मुरली द्वारा. हम बाबा के बच्चे जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समझते हैं, हमारा फर्ज ये बनता है कि हमारा शिक्षक जो हमें प्राप्ति में दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको हमारे जीवन में अमल में लाना है. आज बाबा ने बोला है कि मैं आपको शिक्षक बनके ज्ञान का मक्खन दे रहा हूं, और ज्ञान का मक्खन दे करके आपको सत्युग का मालिक बना रहा हूं. और बाबा ने ये भी समझाया आज कि यदि आपको विश्व का मालिक बनना है तो आपके अंदर ऐसे धारणाएं भी बनना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस भी आप करने हैं जो कि आप विश्व के मालिक का योग्य बने. बाबा बोलते हैं कि मैं आपको वेद और शास्त्रों का, उपनिषदों का सार बताता हूं. वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है? वेद माना ज्ञान है, समझ है. वेदांत माना वेद का अंत, आनंद होता है. जो वेदा अध्ययन करते हैं ना, उनका उद्देश्य ही होता है कि हमारे अंदर आनंद आ जाना चाहिए 365 डेज 24/7. उपनिषद का मालूम यह है कि विद्यार्थी अपने गुरुओं के नजदीक बैठ करके, उपमाना समीप बैठना, समीप बैठ करके गुरु से शिक्षा प्राप्त करना है. और उपनिषद का उद्देश्य क्या है? उपनिषद का उद्देश्य यह है कि इन शास्त्रों में जो रहस्य भरे हैं, उन रहस्यों को गुरु ने अपने शिष्यों को बताना है, समझाना है. और ये रहस्य क्या है, उपनिषद में जो भरे हुए हैं, रहस्य ये है कि मानव अपने जीवन में जो संकष्ट भरे जीवन बिता रहा है, विघ्न उनके सामने आ रहे हैं, उन विघ्नों को समाप्त करके, विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करके जीवन को आनंदमय बनावे. तो बाबा ने इन वेद और शास्त्रों का सार जो है ना, सार क्या हुआ? आनंदमय जीवन बिताना, हर घड़ी आनंद. ये सार बाबा ने बता रहे हैं. वेद और शास्त्रों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, उनको समझना, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम है, संस्कृत पढ़ना है, सीखना होता है. लेकिन बाबा ने आम लोगों को भाषा में बहुत इजी तरीके से इस आनंद का प्राप्ति करने का विधि बता रहे हैं। सिंप्लीफाई किए हैं बाबा ने। हम जब स्कूल में जाते थे मैथमेटिक्स में एक एक सम देते थे सिंप्लीफाई करके, एक एक सम में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब मिलके एक सम, उसको सिंप्लीफाई बनाओ। तो बाबा ने इन सारे बातों में सारे शास्त्रों में जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रखा है मक्खन बना के। तो बाबा बोलते हैं जिन्होंने इस मक्खन को रोज लेते हैं उनको प्राप्ति क्या होता है, आने वाले सत्य की दुनिया की मालिकपन। इंग्लिश में एक कहावत है, टू लीड ए सिंपल लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सरल जीवन बिताने को बहुत मुश्किलें होते हैं। बाबा बोलते हैं मैंने आपको जो सरल रीति से जो विद्या सिखाया हूं उन विद्या को आपको जीवन में लाने के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन का जरूरत नहीं है, आपको कोई अन्य भाषा को सीखने का जरूरत ही नहीं है। मैंने जो आपको बताया हूं उनको आप यदि रोज अपने जीवन में अमल में लावे तो आपको जरूर ये मक्खन का प्राप्ति हो जाएगा। आज हमने बाबा ने जो आत्मा के बारे में बताए हैं, जो पहला लेसन है जो आज भी बाबा ने मुरली में बताया है कि बच्चे आपको ये निश्चय रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर में बैठा हूं ब्रुकुटी के अंदर, इस ब्रुकुटी के अंदर बैठ करके मैं आत्मा, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है जो मेरा सदगुरु है वो जो समझ दे रहे हैं उसको मैं ले रहा हूं, वो विद्या मैं सीख रहा हूं, ये निश्चय होना चाहिए मुझे। हर रोज जब भी मुरली सुनते हैं तो हमारे अंदर ये संकल्प आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरा सामने बाबा बैठ करके मुरली सुना रहे हैं। तो मुरली को मैं इन कानों द्वारा सुन करके मेरा बुद्धि में भर करके मेरा जीवन में लाना है, ये निश्चय हमको जरूर आना है। क्योंकि बाबा बताते हैं यदि आप आत्मा समझते हो तो आपके अंदर जो समाज में असमानताएं हैं आपके सामने वो नहीं आएंगे, क्योंकि लोग दूसरों को जिन आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं कि ये भाई ये बहन है, इनका हिस्ट्री ये है, ये इनके घर के घर से आए हैं, ये पढ़ाई है पढ़ाई की है, ये अनपढ़ है, ये सभी बातें असमानताएं होते हैं ना, ये समाप्त हो जाना चाहिए। बच्चे आपके दृष्टि ऐसी हो जाना चाहिए कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, और हम सब समान हैं आत्मा के नाते। तो ये समानता यदि हम जीवन में लाना चाहते हैं तो हमारा जीवन को बहुत सिंप्लीफाई करना चाहिए, जैसे बाबा ने हमको बोला है। तो आज थोड़ा टाइम हमने बाबा ने जो सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला दिया है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाबा का पहला लेसन जो है, जो आत्मा का समझ है, इसीलिए बाबा बोलते हैं कि आत्मा का ज्ञान जो है ना, आत्मा का ज्ञान जो लेते हैं, इससे ये नहीं मालूम होता है कि ये आदमी आत्मा का अनुभूति किया है या नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान अलग है, अनुभव अलग है। यदि हम ज्ञान का अनुभव करना होता है तो हमको जरूर उसका प्रैक्टिस भी करना होता है। तो ज्ञान का अनुभूति माना क्या है, आत्मा का ज्ञान का अनुभूति माना क्या है, देही अभिमानी स्थिति का मतलब क्या है, आत्मा का अनुभूति स्थिति माना आत्मा का संपूर्ण ज्ञान का अनुभूति। आत्मा में गुण है और सारे गुण हमको प्रैक्टिस करना है, अनुभव करना है। आत्मा का घर कौन सा है, आत्मा कहां से आया है, कहां जाने वाला है, इस घर का अनुभूति हमको होना चाहिए। और आत्मा का कर्तव्य क्या है, जिसलिए आत्मा इधर आई है वो कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य भी हमको पूरा पूरा मालूम हो जाना चाहिए। तो गुण है, बाबा बोलते हैं सात गुण है, नॉलेज है, प्यूरिटी है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है और पावर है। ये सात गुण बाबा ने बोलते हैं आत्मा का निजी गुण है, बेसिक क्वालिटीज। यदि हमको आत्मा का अनुभूति करना चाहते हैं तो इस सातों गुण का हमको अनुभव हो जाना चाहिए। नॉलेज माना क्या है, पवित्रता माना क्या है, आदि आदि। इसीलिए कोई भी साधना करना है तो व्यक्ति को दो चीज का जरूरत पड़ती है, एक है एकांत, दूसरा है अभ्यास। जब हम एकांत में बैठ करके अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा सातों गुणों का अनुभव करना है। जब अंदर से ये मुझे आवाज आता है कि हां मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान है, मेरे में पवित्रता है, शांति है, संतुष्टता है, सुख है, ये एक एक चीज जो है, क्वालिटीज जो है, उसका अनुभूति जितना होता है मेरा अंदर वो घुस जाता है, मेरा संस्कार में आ जाता है। जब ये संस्कार में आ जाते हैं व्यक्ति का परिवर्तन होता है, व्यक्ति में जो अंधकार है अज्ञान का अंधकार है वो निकल करके ज्ञान का प्रकाशता आ जाता है। तो जो विकार है, जो बाबा बोलते हैं, तो देह का अभिमान है, देह का अभिमान दूर होकर के देही अभिमानी बन जाते हैं। देह का अहंकार में, देह का अभिमान में तीन हिस्से हैं। एक है देह का अहंकार, दूसरा है देह का अभिमान, तीसरा है देह का भान। देह का अहंकार माना विकार हो गया ना, तो उस विकार से हमको मुक्ति लेना है। देह का अभिमान माना अवगुण है ना, वो अवगुण से भी हमको मुक्ति लेना है। देह का भान है ना, वो बहुत सूक्ष्म अवगुण है, उसको भी निकालना है। तो इस अभ्यास के लिए हमको चाहिए एकांत और प्रैक्टिस। और आत्मा का घर कौन सा है? परंधाम है। परंधाम को हम रोज विजिट करके, देख करके, परंधाम का अनुभव को साकार दुनिया में लाना है। परंधाम में क्या है, परंधाम में कौन सा साइलेंस है, परंधाम में कौन सा प्रकाश है, परंधाम में कौन सा बाबा का शक्ति है, उनको हम परंधाम में जाकर के अनुभव करके इधर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। तीसरी बात, जो आत्मा की कर्तव्य है, किस लिए हम इधर आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, बाबा का बच्चा बनने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा मूल कर्तव्य है कि सबको मेरे अंदर से शुभ भावना निकलना है, यही कर्तव्य है। कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी हो, सबके तरफ से हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद मिले, इसीलिए हम अंदर से भरपूर होकर के उनको शुभ हम सोचना है, शुभ ही देना है। तो गुण और घर और कर्तव्य, ये तीनों बातों को हम ध्यान में रख करके साधना करना है। आत्मा का अनुभूति के लिए चार स्टेप्स में हम देखेंगे क्या क्या करना है। चार स्टेप्स है आत्मा का अनुभूति करने के लिए, ताकि गुण, घर और कर्तव्य पूरा हमारे समझ में आ जाए। पहली स्टेप यह है कि स्थूल अभ्यास। स्थूल अभ्यास माना मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, शरीर स्थूल है, आत्मा अभौतिक शक्ति है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो अंदर से मुझे डिमार्केशन लाइन मालूम हो जाना चाहिए, मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के अंदर बैठ करके आंखें द्वारा देख रहा हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं। इसका प्रैक्टिकल हमें अनुभव होते जाना है। तो ये पहला अभ्यास, ये पहला अभ्यास का लक्षण, इसको अभ्यास करने से क्या लक्षण आ जाता है व्यक्ति में? पहला लक्षण यह है कि जिन्होंने ये अभ्यास करता है उनके अंदर जो संकल्प है वो संकल्प का स्पीड कम हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मल रीति से हम बहुत बहुत फास्ट रीति से थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं हम। बाबा बोलते हैं बहुत सोचना का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल लाइफ को लीड करना है ना। ब्रह्मा बाबा ने कैसा सोच रहा था वैसा ही आपको भी करना है। शिव बाबा कैसा सोचता है वैसे आपको भी करना है। तो हमारे अंदर का सोचने का तरीके बदल जाना चाहिए। स्पीड कम हो जाना चाहिए, क्वालिटी ज्यादा हो जाना चाहिए। स्पीड कम, क्वालिटी ज्यादा। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क आ जाना चाहिए। पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण यह है कि जिन्होंने आत्मा अनुभूति का अभ्यास करता है उनका तन और मन दोनों शीतल हो जाना चाहिए। क्योंकि जहां हमारा संकल्प का संख्या कम होता है, संकल्प का क्वालिटी का मात्रा बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उन संकल्पों का प्रभाव हमारा हर इंद्रियों का ऊपर होता है। जब उनका प्रभाव हमारा इंद्रिय के ऊपर होता है तो हमारा सब इंद्रिय शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। तो मन शांत हो जाता है और तन शीतल हो जाता है। ये दूसरी लक्षण है। तीसरी लक्षण है कि हमारे कर्मेंद्रियों का जो बाहर दुनिया में अट्रैक्शंस है, अट्रैक्शन से परे हो जाते हैं। जैसे कि हम जो देखते हैं, ये चाहिए मुझे, मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा है, ऐसे चाहिए चाहिए का मन जो है ना, ये अट्रैक्शन होता है। प्रकृति का भी अट्रैक्शन होता है, शरीर प्रकृति है ना, तो प्रकृति का भी अट्रैक्शन शरीर का होता है। ये भी समाप्त हो जाना चाहिए। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, सब आत्मा है, तो प्रकृति का अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए ना। तो ये तीसरे लक्षण है। चौथी लक्षण है, जिन्होंने आत्मा का अभ्यास करते हैं, आत्मा का अनुभूति करते हैं, उनमें गुणग्राहकता का अभ्यास बढ़ जाता है। गुणग्राहकता बहुत बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अपोजिटली हम क्या करते हैं, इनमें ये अवगुण है, इनमें ये अवगुण है, ऐसा हम देखते जाते हैं। बाबा बोलते हैं आप जितना औरों में, औरों के जीवन में जो अवगुण देखते जाते हैं, वो अवगुण आपके अंदर दिखाई देना पड़ता है, वो रिपीट होता है। जो आप देखते हैं, देख के आपके मन में उसके ऊपर संकल्प करते हैं और उसके ऊपर आपके मन में मनन चिंतन चलता है, तो वही अवगुण आपके अंदर भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे अंदर ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए, हर एक बाबा के बच्चे सब में अच्छे अच्छे गुण हैं, इसलिए बाबा ने चुने हैं ना हम सभी को। अवगुण है, ऐसा नहीं हमारे अंदर अवगुण पूरा निकल गया है, ऐसा नहीं है, अवगुण है। अवगुण देखते हुए भी हर एक के जीवन में जो गुण है उनको भी निकालना है। तो गुणग्राहता का अभ्यास शुरू हो जाता है। और पांचवी बात, पांचवी लक्षण यह होता है कि हम सबको सुख देने का अभ्यास करते हैं। कौन सुख देते हैं? जो आत्मा अनुभूति का अभ्यास, पहले लेसन जो स्थूल अभ्यास करते हैं ना, स्थूल अभ्यास से ही इतना सारा प्रॉफिट्स हो जाते हैं, इतना सारा एडवांटेजेस हो जाते हैं। जो सुख देना माना, अंदर से सभी को भला हो ऐसा संकल्प करना ही सुख देना है। क्योंकि बाबा के बच्चे होने के बाद हम किसी को शाप नहीं दे सकते हैं, हम सभी को आशीर्वाद दे सकते हैं, हम सभी के ऊपर अच्छा अच्छा संकल्प ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना है, ये पहली स्टेप है। पहली स्टेप से जो स्थूल रीति से हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब हमारे भाई बहन हैं, शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, ऐसा हम यदि हर आत्मा को देख करते संकल्प करते हैं तो ये पांच लक्षण उनमें दिखाई देना पड़ता है। दूसरा अभ्यास सूक्ष्म अभ्यास, आत्मा अनुभूति का सूक्ष्म अभ्यास। इसको करने के लिए हमको सूक्ष्म लोक में जाना है। सूक्ष्म लोक में हम जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। सूक्ष्म लोक में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहता है, कोई अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, सिर्फ केवल सूक्ष्म शरीर रहता है। तो इसीलिए हमारे अंदर जो संकल्प उत्पादन होते हैं उनमें पवित्रता और शक्तिशाली और निस्वार्थता, ये तीनों रीति का पावर आ जाता है। तो संकल्प में हमारे अंदर निस्वार्थता, पवित्रता और सकारात्मकता, ये तीनों शक्ति ये बाद आ जाते हैं ना, हम अंदर से बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। दूसरी बात, हम यदि सूक्ष्म में ये प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, हमारे अंदर हल्केपन का अनुभव होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी रीति का अभ्यास है। तीसरी रीति का अभ्यास अशरीरी स्थिति का अभ्यास। अशरीरी स्थिति का अभ्यास माना देह से डिटैच होने का अभ्यास। स्टेप्स बढ़ते जाना है। बच्चों को हम पहले प्री नर्सरी में डालते हैं, उसके बाद नर्सरी में डालते हैं, उसके बाद पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड, उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड। तो आध्यात्मिक साधना में भी ये स्टैंडर्ड रीति से हम करना है। पहले पहले सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद अशरीरी बनने का अभ्यास। अशरीरी बनने का अभ्यास माना मैं शरीर नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं शरीर से डिटैच हो सकता हूं क्या? बाबा ने एक मुरली में बताया है कि आप एक चेयर में बैठ जाओ, नहीं तो आप पलंग के ऊपर सो जाओ। अभी आप एक संकल्प करो कि मैं इस स्थूल शरीर से डिटैच होकर के सूक्ष्म शरीर लेकर के मैं इस शरीर से बाहर जा रहा हूं। बाहर जाके वहां जाकर के मैं देख रहा हूं मेरा शरीर, स्थूल शरीर को, और मुझे ये सूक्ष्म रीति का प्रकंपन आ रहा है कि ये मेरा ही शरीर है और मैं इसे अलग हो गया हूं। और डिटैचमेंट है ना, डिटैचमेंट से बहुत बहुत मन में आनंद आ सकता है। तो डिटैचमेंट का अभ्यास जो गड़ी गड़ी करता है उनके अंदर आत्मा का अनुभूति का क्वालिटी बढ़ सकता है। तो इसीलिए डिटैचमेंट माना निद्रा की स्थिति। जब हम नींद करते हैं ना, हम डिटैच ही रहते हैं। आत्मा को ये मालूम, स्थूल रीति से मालूम नहीं रहता कि मैं डिटैच हूं, ओके, लेकिन डिटैच होने का अभ्यास ऑटोमेटिकली हो जाता है। डिटैच ऐसा होने से बहुत प्रमुख रीति का एक लक्षण या एक बेनिफिट यह है कि शरीर में जो बीमारी होता है, बीमारी से दर्द भी बहुत हो सकता है, लेकिन जिनको डिटैच होने का अभ्यास हो जाता है उनको बीमारी होते हुए भी दर्द का अनुभव बहुत कम होता है। इसीलिए बीमारी जब आता है, यदि हमको पहले से ही शरीर से डिटैच होने का अभ्यास है और शरीर से घड़ी घड़ी डिटैच हो जाने का प्रैक्टिस अच्छा लगता है, उनको मानसिक और शारीरिक दर्द का अनुभव कम हो सकता है। इसको ही हम जो भी सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी करने के पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या होता है, एनेस्थीसिया से आत्मा को मालूम नहीं होता है कि दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ सर्जरी हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं रहता एनेस्थीसिया। ऐसे ही ये डिटैचमेंट भी एनेस्थीसिटिक इफेक्ट देता है। मैं जाग रहा हूं, मुझे मालूम है क्या कर रहा हूं, मैं अलग हो गया हूं, इसीलिए मैं सब कुछ देख सकता हूं, फिर भी मुझे मालूम है मुझे बीमार है लेकिन मुझे पेन नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि आपका शरीर का बीमार है ना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो आना ही है, क्योंकि हम ऐसा कर्म किए हैं जिससे हमको ये बीमारी आना ही चाहिए था, वो आया है। लेकिन दर्द भोगना या नहीं भोगना हमारा सिलेक्शन है, हमारा चॉइस है। ये चॉइस हम बाबा के बच्चों को ही मिला है, दूसरों को ये नहीं पता है। तो एनेस्थीसिया जैसे इफेक्ट देता है शरीर के ऊपर और आत्मा के ऊपर, ऐसा इफेक्ट हम योग में कर सकते हैं। इसीलिए वो तीसरा जो प्रैक्टिस है, जो शरीर स्थिति का डिटैच होने का अभ्यास, इससे हमको ये बेनिफिट मिलता है। और इससे और एक बेनिफिट ये है कि हम हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि हम सब श्रृंखलों से, सब बॉन्डेजों से मुक्त हो गए हैं, फ्रीडम, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मेरा शरीर भी स्वतंत्र है, मैं आत्मा भी स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए अंदर में कोई भी बंधन नहीं रहना चाहिए, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, रोगों का बंधन या मानसिक क्लेश का बंधन, कोई भी बंधन नहीं रहना चाहिए। तो ये सब रहते हुए मैं बंधन से मुक्त यदि होना चाहता हूं तो ये प्रैक्टिस का बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो ये तीसरी है। चौथी बात यह है कि इससे ज्यादा मैं निराकारी आत्मा हूं, ये निराकारी अवस्था का प्रैक्टिस है, ये परमधाम का प्रैक्टिस है। जैसे बाबा निराकार है, मैं आत्मा भी अशरीरी बन करके निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकता हूं, घर में, मेरा घर में बाबा के साथ। जो बाबा बोलते हैं, आप जितना टाइम मेरे साथ परंदा में रह सकते हो उतना टाइम आपका स्थूल और सूक्ष्म बंधनों का वो अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ये अट्रैक्शन से परे हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आप परे हो जाते हैं। तो आत्मा लिबरेटेड सोल, मैं लिबरेटेड सोल हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं लिबरेटेड सोल माना फ्रीडम से एक पद ज्यादा है। जो तीसरी प्रैक्टिस में जो मुझे फ्रीडम मिला था, इससे और एक स्टेप ज्यादा जाके मैं लिबरेटेड सोल हो गया। इसलिए बाबा को बोलते हैं लिबरेटर, बोलते हैं बाबा लिबरेटर है। लिबरेटर माना आत्मा को जितना अंदर से दुख है, दर्द है, बंधन है, उस सब से मुक्त करके बाबा ने अपने साथ जब रखता है, वो है सेंस ऑफ लिबरेशन, लिबरेटेड सोल। जो लिबरेटेड सोल है वो ज्ञानी सोल है, नॉलेजफुल सोल है। तो नॉलेज जब अंदर जाता है तो उसका इफेक्ट ये हो जाना चाहिए, तो मैं बाबा का समान बन सकता हूं, बाबा के साथ बैठ सकता हूं। जितना समय मैं बाबा के साथ बैठ सकता हूं परंधाम में, उतना टाइम मैं बाबा के समान लिबरेट हूं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे इस अभ्यास से मिलता है कि मैं आत्मा सूक्ष्म शक्ति हूं, इस शरीर में बैठा हूं, फिर भी मैं मुक्त हूं। दूसरी एडवांटेज ये हो जाता है कि मेरा संकल्प कल्याणकारी संकल्प हो जाते हैं। जो पहले पहले जो शक्तिशाली संकल्प आते थे, पवित्रता का संकल्प आते थे, ये सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला संकल्प ये है कि कल्याणकारी संकल्प। हर संकल्प कल्याणकारी, बाप समान कल्याणकारी संकल्प। शिव बाबा हर घड़ी सभी के ऊपर कल्याणकारी संकल्पों का ही वो वाइब्रेशंस देते हैं। हर उनका बात में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। हम भी ऐसा हमारा मन में इतना ताकत ला सकते हैं जिससे हम हर घड़ी सभी के ऊपर कल्याणकारी संकल्पों का बीज दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। तो एक कल्याणकारी संकल्प से मुझे इससे बड़ा एक एडवांटेज मिलता है कि मैं सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता हूं, और मैं मेरा अंदर जो ताकत है, आत्मा का ताकत जो है, आत्मा के ताकत बहुत गुना बढ़ सकता है। और मेरा अंदर इतना खुशी, इतना आनंद आ सकता है जो मेरा इंद्रियों से अतीत है। जो इंद्रियातीत बोलते हैं ना, इंद्रियातीत सुख, इंद्रिय सुख अलग है, इंद्रियातीत सुख अलग है। तो यदि मैं इंद्रियातीत सुख का अनुभव करना चाहता हूं तो मुझे निराकार स्वरूप का अभ्यास करना है। तो ये चार स्टेजेस, चार स्टेप्स जो है, इसको हम घड़ी 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 याद करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर बहुत बहुत साइलेंस आ जाता है। बाबा से मिलने के लिए साइलेंस का जरूरत बहुत बहुत आवश्यक है। हम बाबा को अंडरस्टैंड करना है, बाबा जो बोल रहे हैं वो बात हमारे अंदर घुसना है, वो बात हमारे अंदर काम करना है, तो हमारे अंदर साइलेंस का शक्ति बहुत ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साइलेंस की दुनिया से आता है, साइलेंस की दुनिया में वापस चले जाता है। हम भी साइलेंस की दुनिया से आना है, बाबा से मिलना है, फिर साइलेंस की दुनिया में वापस चले जाना है। हर दिन हम जब मुरली सुनते हैं तो बाबा के साथ ही ऊपर से नीचे आना है, अवतरित आत्मा बनना है और मुरली सुनकर के बाबा के साथ परंधाम चले जाना है, योग करना है। इसलिए बाबा बोलते हैं मुरली के बाद आप हर रोज कम से कम 15 मिनट योग जरूर करना है परंधाम में। तो बाबा जो हमारे ऊपर ये ज्ञान का वर्षा करते हैं उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। तो इसलिए हम सभी बाबा से कल मिल रहे हैं, तो मिलने से पहले हमको अंदर से ये साइलेंस का ताकत बहुत जमा करना जरूरी है। साइलेंस माना हमारे अंदर बहुत बहुत कम संख्या का और हाई क्वालिटी का संकल्प रखना है। आम रीति का संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कोई भी वेस्ट संकल्प मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। हम इधर आए हैं बाबा से मिलने, बाबा से मिलकर बाबा से जो प्राप्तियां हैं वो सब हमको लेना है। यदि व्यक्त रीति से मिलते हैं या अव्यक्त रीति से मिलते हैं या साइलेंस रूप से मिलते हैं, जो बाबा से शक्तियां आते ही रहते हैं। जितना हम हमारे मन को साइलेंस करते हैं उतना हम बाबा के पावरफुल वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। बाबा का जो टचिंग है ना, बाबा जो बात करते हैं, बाबा जो वाइब्रेशन देते हैं, बाबा जो टचिंग्स देते हैं, उस सब को हम यथावर्त यथार्थ रीति से हम कैच करना है तो मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ साइलेंस रहना ही है। इसलिए बाबा ईश्वरी विश्वविद्यालय में साइलेंस का बहुत जोर दिया है, प्रैक्टिस का। जो सुबह सुबह साइलेंस करता है और सारे दिन में जो अवश्य है उतना ही बात करता है, उसके अंदर बाबा के प्रति अंदर से कनेक्शन रहता है। जितना हम ज्यादा बात करते हैं ना, हम लोगों से कनेक्शन रखते हैं, बातों से कनेक्शन रखते हैं, जितना अंदर बहुत कम संकल्प है उनका कनेक्शन बाबा से रख सकते हैं। तो इसीलिए हम बहुत सालों से और बहुत वर्ष से लोगों के साथ कनेक्शन रखे हैं। अभी टाइम आया है कि हमको बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। बाबा ने जो आया है इस घड़ी हमको जो उनसे प्राप्तियां मिलना है वो सब प्राप्तियों को हमको लेना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमको स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप माना बाबा के स्मृति हमारे अंदर दिखना है, दूसरों को दिखना है। यदि मेरा अंदर पवित्रता का संकल्प है, यदि मेरा अंदर शांति का स्मृति है, तो मेरा बातों में, मेरा मुख में, मेरा बातों से, मेरा मुख से, मेरा संकल्पों से ये दूसरों को मालूम हो जाना चाहिए इसका अंदर क्या चल रहा है। हम अंदर से बहुत कुछ बात करते हैं जिनको हम बाहर के आदमियों से बात नहीं करते, अंदर बहुत बात करते हैं। हम अंदर की बातों को कम करना है। यही सरलता है। बाबा ने जो सरलता का पाठ सिखाया है, ऐसा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं ये नहीं चाहिए, अंदर से जो चाहिए वही करना है, इससे मेरा भला हो। अंदर से मुझे ये सोचना है जिससे मेरा भला हो, वही सोचना है, दूसरा सब बातों को हम बंद कर देना चाहिए। इसीलिए हम अंदर से ताकत भरा जीवन बना सकते हैं, यही बाबा का इच्छा है और यही बाबा का सरल रीति का जीवन बिताने का संदेश है। तो हम कल शाम को बाबा से मिल रहे हैं, तब तक हम बहुत अंदर से शांत रहें, स्थूल रीति से भी शांति का वाइब्रेशन देवें, शांति का प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं ना, उसके ऊपर खड़ी नजर रखना है, कौन से संकल्प मुझे आ रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, ये मुझे जरूरत है ये नहीं है, वो जितना जरूरत नहीं है तो क्यों करें। बुद्धिमान का लक्षण क्या है, जो करना है वही करना है ना, जो मुझे चाहिए, जो मुझे जरूरत है वही करते हैं ना, तो मैं भी वैसा बुद्धिमान व्यक्ति बनूं, जो चाहिए उसी के ऊपर संकल्प करूं। बाबा से मिलना है, बाबा से प्राप्तियां लेना है, और सबसे ज्यादा आत्मा की अनुभूति कल शाम तक हम कैसे तो भी अंदर अंदर से ये बना के रखें, तो बाबा जो कल हमसे मिलने वाला है उससे हम बहुत सारे प्राप्तियां ले सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय राजयोगी बीके रंगनाथ भाई जी, आप कर्नाटक के मैसूर सब जोन के हैं, आपने अपने मधुर वाणी से सबको बंधन मुक्त रहने का और कल्याणकारी संकल्प में रहने का विधि बताई, आपको इस सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद।